ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी शिव बाबा के प्यारे ब्राह्मण, विशेष ज्ञान सरोवर में भट्टी के लिए आप सभी पधारे हैं, तो आप सभी जो भी ब्राह्मण बाबा के बच्चे आए हैं, आप सबको विशेष अलग अलग टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे अनुभवों के आधार से आप सबको क्लास तो मिल रहे हैं और आप सभी बहुत अच्छी तरह से चात्रक बन करके ग्रहण कर रहे हैं। विशेष आज कहा गया कि ईश्वरीय मर्यादाएं आप सभी जानते भी हैं। जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, उन ब्राह्मणों को अपनी मर्यादाओं का तो सबको पता ही है कि बाबा ने हम सबको जो मर्यादाएं दी हैं और बाबा मर्यादा क्यों हमको देता है, क्योंकि वो हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बना रहा है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम के आधार से बनेंगे, उन मर्यादाओं को अपने जीवन के अंदर धारण करने के लिए करने से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। कोई भी कार्य जब किया जाता है तो उस कार्य करने की विधि और नियम होते हैं, और उस विधि और नियम के अनुसार अगर जो कार्य किया जाता है तो उसके अंदर सफलता मिलती है। अगर थोड़ा सा भी विधि को और नियम को चेंज कर देते हैं तो सफलता में अंतर पड़ जाता है। इसी प्रकार प्यारे बाबा ने हम सब ब्राह्मणों को ईश्वरीय मर्यादाएं भी सिखाई हैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए। मोटे मोटे रूप से तो हम सभी ईश्वरीय मर्यादाओं को जानते ही हैं, लेकिन उन मर्यादाओं की जितनी हम गहराई में जाते हैं उतना उससे हमको कितना लाभ होता है। जैसे कोई बीमारी होती है और उस बीमारी की दवाई हम डॉक्टर्स के पास जाते लेने के लिए, तो डॉक्टर दवाई तो देता ही है, लेकिन साथ साथ परहेज भी सुनाता है ना? और साथ साथ अगर कोई होपलेस बीमारी होती है तो कहता है कि उसके लिए ईश्वर की प्रार्थना या दुआएं करो, ईश्वर का आशीर्वाद लो तो आपको फायदा होगा। ऐसे ही हमारे बाबा ने हम सबको मर्यादाएं नियम तो सुनाए हैं, लेकिन साथ साथ प्यारे बाबा की दुआएं कहें, आशीर्वाद कहें, वो भी हमें प्राप्त होता रहे, जिसके आधार पर हमारी ये ब्राह्मण जीवन की जो गाड़ी है वो स्मूथ चलती रहे। जैसे ट्रेन चलती है तो उसकी दो पटरी होती हैं, उस पर स्मूथ चलती है। अगर ट्रेन पटरी से उतर जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है। इसी प्रकार हम सब ब्राह्मण जीवन की गाड़ी भी स्मूथ चलाने के लिए बाबा ने हम सबको दो पटरियां दी हुई हैं, एक है श्रीमत और दूसरी है दृढ़ता। तो श्रीमत और दृढ़ता, उसके आधार पर हम अपने ये ब्राह्मण जीवन की गाड़ी को चलाते हैं। तो जितना श्रीमत पर चलेंगे और श्रीमत को भी हम जितना दृढ़ता से पालन करते हैं उसमें हमें फायदा होता है। अगर हमारे जीवन में दृढ़ता की कमी होती है तो हम जितना फायदा लेना चाहे वो नहीं ले सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारे ब्राह्मण जीवन की भी जो बाबा ने मर्यादाएं और दिनचर्या दी है, अगर हम उस अनुसार चलते हैं और उन मर्यादाओं को, दिनचर्या को हम दृढ़ता से पालन करते हैं तो ये हमारे ब्राह्मण जीवन की लाइफ या ब्राह्मण जीवन की जो हमारी गाड़ी है वो बहुत स्मूथ चलती है। जैसे कहते हैं ना बाबा, अगर श्रीमत के अंदर हम मन मत पर मत मिक्स कर देते हैं तब जीवन में ऊंचाई और नीचाई आती है। लेकिन बाबा कहता है, बाबा ने जो कहा जैसे कहा अगर हम उस अनुसार करते हैं तो हम बहुत ही निर्विघ्न अपनी लाइफ को चला सकते हैं। कई बार बाबा मुरली के अंदर भी कहते हैं कि बच्चे मैं जो हूं जैसा हूं उसे पहचान करके याद करो। कई बार इसके ऊपर एक संकल्प भी चलता है, जो हूं जैसा हूं ऐसा बाबा क्यों कहता है? है? बाबा भी निस्वरूप है, बाबा ज्ञान का सागर है, है? तो बाबा को हम सभी जानते हैं, हमको बाबा का परिचय है कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो हमारा बाप है, हमारा माता पिता है, हमारे से उससे सर्व संबंध है। ये जानते हुए भी बाबा ये शब्द कहता है, मैं जो हूं जैसा हूं। ये शब्द बाबा क्यों कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं? उसकी पहचान हमारे कर्म से होती है कि हमने बाबा को कितना अच्छी तरह से पहचाना है, बाबा की श्रीमत को हमने कितना अच्छी तरह से पहचाना है, और पहचान करके हम उस श्रीमत पर चल रहे हैं, कितना चल रहे हैं, वो हमारा बाबा के ऊपर विश्वास और निश्चय सिद्ध करता है कि बाबा की मुझे पहचान है, बाबा पर मुझे निश्चय है, बाबा पर मुझे विश्वास है, उस अनुसार मेरी लाइफ चलती है। बाबा ने हम बच्चों को कई प्रकार की शिक्षाएं बाबा समय प्रति समय देता है। मुरली माना ही मार्गदर्शन, मुरली माना ही शिक्षाएं, मुरली माना ही धारणाएं, मुरली माना ही पढ़ाई, है ना, जो हम रोज पढ़ते हैं, है? लेकिन मुरली पढ़ने पढ़ने में अंतर हो जाता है ना? एक होता है मुरली को पढ़ना और एक होता है मुरली को धारण करना, है? तो पढ़ लेते हैं लेकिन मुरली की धारणा कितनी होती है? तो बाबा ने हम सबको ये नियम दिया है, मोटे मोटे नियम है कि दिनचर्या भी दी है और नियम भी दी है, मर्यादाएं भी सिखाई है। छोटी छोटी मर्यादा बाबा सिखाता है जिसके आधार से हम मर्यादा पुरुषोत्तम बनते हैं। तो जैसे बाबा रोज हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे तुम बाबा को याद करो, तो हम बाबा को याद तो करते हैं। याद करने की मर्यादा बाबा ने हम बच्चों को क्या दी? नियम भी दिया, दिनचर्या भी दी। बच्चे अमृत वेले मुझे उठकर याद करो, ये नियम बाबा ने क्यों दिया हमको? ये मर्यादा क्यों दी बाबा ने हमको? क्योंकि अमृत वेले, क्योंकि नाम ही अमृत वेला है ना, तो अमृत वेला नाम है, तो अमृत वेले के समय पर जो हम पुरुषार्थ करते हैं वो डायरेक्ट पुरुषार्थ है। अमृत वेले का समय बाप से डायरेक्ट मिलन का समय है ना? तो जब डायरेक्ट मिलेगा तो शक्ति भरेगी, है ना? तो कई ब्राह्मण अमृत वेले में पास होते, कई ब्राह्मण अमृत वेले में फेल हो जाते। तो अमृत वेले को हमको इतना पावरफुल बनाना है, जब हमारा अमृत वेला पावरफुल हो जाएगा तो सब मर्यादाएं हमारे जीवन में आ जाएंगी। और कुछ हमको करने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आएंगी। जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी की बैटरी चार्ज हो गई तो गाड़ी कैसे चलेगी? स्मूथ चलेगी ना। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं है तो गाड़ी को क्या करना पड़ेगा? धक्का मारना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। तो बैटरी मेरी अमृत वेले चार्ज हो गई तो गाड़ी को धक्का नहीं लगाना पड़ेगा, फिर जो है वो स्मूथ चलेगा। तो ये बाबा ने हम सबके लिए नियम भी बनाया और मर्यादा भी रखी। तो हम ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले के ऊपर कितना हमारा अटेंशन रहे। दूसरा फिर बाबा ने हम सबको पढ़ाई है, और पढ़ाई कितनी ऊंची, स्वयं भगवान हमको यहां पढ़ाने के लिए आता है। और कौन सी पढ़ाई पढ़ाता है? ये स्मृति से हम पढ़े। मुरली पढ़ते हैं, मुरली सुनते हैं, लेकिन स्मृति कौन सी रहती है? जैसे बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे अपने लक्ष्य को बुद्धि में रखो और उस लक्ष्य को बुद्धि में रख करके पढ़ाई पढ़ो। जैसे स्कूल में कॉलेज में स्टूडेंट होते हैं उनको अपना लक्ष्य होता है, उस अनुसार उनकी पढ़ाई चलती है। डॉक्टरेट की पढ़ाई पढ़ रहा होगा तो उसको बुद्धि में होगा कि मैं डॉक्टर बनने, भूलता नहीं है, डॉक्टर बनूंगा, भूलता है? नहीं भूलेगा, हमको तो भूल जाता है। बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाई दी किसके लिए दी? देवता बनने की पढ़ाई दी है वो सदैव याद रहे, जैसे बाबा को सदैव याद रहता था, है ना। ब्रह्मा बाबा का मिसाल सुनते बाबा को एक सेकंड भी नहीं भूलता था कि मैं ये बनने, हमेशा बाबा को ये स्मृति रहती थी कि मैं नारायण बनने वाला हूं, मैं श्री कृष्ण बनने वाला हूं। तो ये बनने वाला हूं, लक्ष्य सामने है, तो कहते हैं लक्ष्य से लक्षण आते हैं, है ना। तो जब लक्ष्य सामने होगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर वो लक्षण आते जाएंगे, जो बाबा हम बच्चों को मर्यादाएं सिखाते, नियम सिखाते, वो आते जाएंगे, ऑटोमेटिक आएंगे, क्योंकि लक्ष्य है। उसमें वो बहाना नहीं करेगा, अच्छा बहाना करेगा तो उसको डिग्री कम मिलेगी, है ना। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनको ये रहता है मुझे ये प्राप्त करना है, हमने भी लक्ष्य रख दिया, हमको ये बनना है, और उस बनने की बाबा ने हम सबको ये विधि सुनाई है। तो पढ़ाई पर भी अटेंशन होगा, अमृत वेले के ऊपर ही अटेंशन होगा, जो बाबा ने हमारे नियम मर्यादाएं बनाए। हम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा क्या होता है, क्लास तो हो गया, फिर अन्न है, अन्न का भी बाबा ने हम सबके लिए परहेज सुनाई है, है? कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ब्राह्मणों का जो भोजन कैसा होना चाहिए, देवता बनने वाले हैं और बाबा ने हम सबको कैसा ब्रह्मा भोजन खिलाया है। हम कहते हैं हम सब ब्रह्मा भोजन खाते हैं, खाते हैं ना ब्रह्मा भोजन, तो ब्रह्मा भोजन किसको कहा जाएगा है? एक है भोजन और एक है ब्रह्मा भोजन, है ना। तो भोजन और ब्रह्मा भोजन में अंतर क्या है, जो भोजन है ही उसी को ही ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। भोजन को भगवान को भोग स्वीकार करा करके खाया जाए वो ब्रह्मा भोजन है। तो बाबा ने हमको ये मर्यादाएं दी कि बाबा को भोग लगा करके हमें खाना है, भोजन को ब्रह्मा भोजन बना करके खाना है। और जो कहते हैं ब्रह्मा भोजन खाएगा उसके कालकंटक दूर हो जाएंगे, है ना। तो हम रोज ब्रह्मा भोजन खाते हैं, बाबा को भोग लगाते हैं, है भाई, कहते सेंटर पर भोग लगता है, सेंटर पर ब्रह्मा भोजन है परिवार में, है भाई, बाबा को हमको ब्राह्मण माना ही हर ब्राह्मण को बाबा को भोग लगा करके ही ब्रह्मा भोजन खाना है। बाबा कई बार मुरली के अंदर हमको कहते हैं कि बच्चे अगर आप बाबा को याद करके नहीं खाएंगे तो आपका भोजन माया खा जाएगी, और जब माया भोजन खाएगी तो ताकत वाला कौन बनेगा, माया बनेगी या हम बनेंगे, माया बन जाएगी, वो शक्तिशाली बन जाती है। तो इसीलिए हमको भी ब्रह्मा भोजन बाबा को भोग स्वीकार करा करके हमको ब्रह्मा भोजन खाना है, और ब्रह्मा भोजन खा करके हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाए। तो मैं सुना रही थी कि ब्राह्मणों को सदैव ब्रह्मा भोजन ही खाना चाहिए, और जो बाबा के बच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं उनको जो भी परिवार में रहते हैं, घर में रहते हैं, तो वहां पर भी उनको बाबा को भोग जरूर लगाना चाहिए। विशेष माताओं को बाबा को भोग लगा करके ही भोजन खाना चाहिए। बाबा को भोग लगाने से भोजन के अंदर शक्ति भरती है। आप अपने परिवार में भी बाबा को भोजन खिलाएंगे। क्यों भोजन? क्योंकि एक तो हमें भगवान खिलाने वाला है, खिलाने वाले को हम ऑफर करके फिर हम भोजन खाएं। बाबा कई बार मुरली में कहते, बच्चे अगर बाबा को नहीं खिलाते खुद खा लेते हैं उनको चोर कहा जाता है, क्योंकि बाबा को तो ऑफर ही नहीं किया, छुपा के खा लिया, है ना? तो छुपाने वाला कौन होता है, है ना? तो बाबा को सदैव, जो भले फैमिली में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको यही कहा कि बच्चे हर घर को मंदिर बनाना है, है? तो मंदिर बनाने के लिए जो भी परिवार में रहते हैं, फैमिली में रहते हैं, उनको अपने सेंटर की प्रमाण दिनचर्या रखनी चाहिए, जो बाबा ने ब्राह्मणों की दिनचर्या दी। अगर हम ब्राह्मणों की दिनचर्या अनुसार चलते हैं तो हमारे घर के अंदर सुख और शांति रहेगी, पक्की बात है। और जो दिनचर्या को ऊपर नीचे करते हैं तब परिवार में भी अशांति आती है। तो परिवार को सुख शांति में बनाने के लिए हमें अपनी जो बाबा ने दिनचर्या मर्यादाएं दी हैं, उन दिनचर्या को अगर हम पालन करके चलते हैं तो हमारा परिवार भी सुखी बन जाए। हर एक चाहता है कि भाई मेरा परिवार सुखी बने, शांति रहे। तो शांति और सुख कहाँ मिलता है? आज लोग मंदिर में क्यों जाते हैं? सुख शांति लेने जाते हैं। तो बाबा कहता है हरेक को अपने घर को मंदिर बनाना है। तो घर को मंदिर बनाने के लिए क्या करना होगा? जो हमारा बाबा ने हमको जो मर्यादाएं दी हैं, उन मर्यादाएं अनुसार, दिनचर्या अनुसार हम चलेंगे तो हमारा घर मंदिर बन जाएगा। तो घर घर को मंदिर, क्योंकि बाबा घर घर को स्वर्ग बनाने आया। बाबा हरेक बाबा के बच्चों को बाबा देवता बनाने के लिए आए, हर ब्राह्मण को देवता बना रहा है। तो इसीलिए देवताओं को अपने जीवन में मर्यादाओं को धारण करना है, घर में भी अपनी दिनचर्या जो बाबा ने दी है उस अनुसार चलना है, उसी अनुसार कार्य करना है। ये हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है। तो जितना मर्यादाओं को हम पालन करते हैं उतना हम सुखी बनते हैं। ये हमारा एक प्रैक्टिकल अनुभव है। मैं विशेष फिर आप आज कहा कि दीदी अपना अनुभव सुनाना, हाँ? तो मैं विशेष अपना अनुभव सुनाती हूँ कि हमको ज्ञान 66-66 में मिला। 66 में हम ज्ञान में आए और ज्ञान में आने का भी एक विचित्र अनुभव है कि ज्ञान में हमारे सबसे पहले हमारे लौकिक फादर आए। वो बात मैं इसलिए सुना रही हूँ कि कैसे बाबा जीवन में परिवर्तन लाता है, हाँ? और वो आपको बताना है कि हमारे लौकिक फादर जो थे वो बहुत व्यसनी थे। उनके जीवन में बीड़ी, सिगरेट, ये सब बहुत था, मौज शौक बहुत था। तो सिगरेट भी पीते थे और हमारी लौकिक माताजी जो थी वो बहुत धार्मिक थी और फादर उसके विरुद्ध थे, हाँ? तो घर में दोनों का झगड़ा चलता था बहुत ज्यादा, तो चलता रहता था। तो हमारे फादर को किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहां पर जाना है, किसी दोस्त ने कहा। तो पहले तो बाबा के घर की बहुत बदनामी थी आश्रम की, कि वहां कहते थे ब्रह्मा कुमारियों के पास नहीं जाना है, वो भाई बहन बना देती हैं, वो घर बार छुड़ा देती हैं, संसार छुड़ा देती है, ये सब बहुत थी, स्ट्रिक्ट था। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमको नहीं जाना है, ये वो घर बार थोड़ी छोड़ना है, पर उनके दोस्त जबरदस्ती हमारे फादर को ले गए और वहां जैसे ही वहां गए और जाकर के सेंटर पर उन्होंने एक चित्र देखा और वो चित्र था रावण का और उस चित्र के नीचे लिखा हुआ था कि रावण मरा नहीं। तो हमारे फादर ने पूछा वहां दीदी से कि रावण को तो हर साल जलाते हम लोग, आपने ये क्यों लिखा है कि रावण मरा नहीं है? तो दीदी ने कहा ये समझने के लिए आपको 7 दिन आना पड़ेगा। उनको एकदम, बाबा कहते हैं ना, जो बाबा के बच्चे होते हैं ना उनको एकदम कोई चीज टच हो जाती है, ऐसे उनको ये टच हुआ। तो कहा ठीक है मैं आऊंगा 7 दिन। फिर ऐसे बातचीत करते करते उनको उनके मुख से सिगरेट की बदबू आई। तो दीदी ने कहा भाई साहब आप सिगरेट पीते हो? तो बोला हाँ पीता हूं, बहुत पीता हूं। तो कहा अगर आपको ये समझने आना है तो आपको सिगरेट छोड़नी पड़ेगी। तो उसने कहा ठीक है मंजूर है मैं छोड़ दूंगा। उसी समय पर वहां ही वो सिगरेट डस्टबिन में डाल करके आ गए। कौन सी पॉइंट टच हुई? रावण मरा नहीं है वो मुझे जानना है। देखो बाबा कहते ना मेरे बच्चों को कोई चीज टच होती है, पॉइंट टच होती है, उनके दिल को वो चीज छू गई और उन्होंने तुरंत छोड़ दिया और फिर सेंटर पर दूसरे दिन से जाना शुरू कर दिया और वो भी सुबह में 5 बजे है? जो सुबह में 9 बजे उठते थे उसको 5 बजे उठ के नहा धो के गए। हमारी माताजी को ये हुआ ये कहां जाता है जो 9 बजे सो के उठने वाला अभी सुबह सुबह उठ के कहां जा रहा है? और फिर देखा 2-3 दिन से सिगरेट भी नहीं पी रहे हैं, पता तो पता चलता है ना घर में। तो पूछा कि कहां जाते हो? कहा भी नहीं बताता हूं बाद में बताऊंगा। जाते रहे और बहुत गुस्सा वाला नेचर था। तो धीरे धीरे उसी दिन से उनके जीवन में इतना परिवर्तन आ गया तो माताजी को भी आक्रोशन हुई और हम बच्चे भी, पापा क्रोधी थे तो हमको भी गुस्सा करते थे तो उनके पास ही नहीं जाते थे, हम कभी भी नहीं जाते थे। लेकिन फिर हमसे प्यार से बातचीत करने लगे, सब मतलब परिवर्तन आया तो हम सबके दिल में भी आया कि पापा कहाँ जाते हैं हमको भी वहां जाना है। तो उनके परिवर्तन से हम सारा परिवार बाबा के घर पहुंच गए। बाबा के पास गए और वो दिन था जिस दिन मैंने सेंटर पर पांव रखा, शिवरात्रि का दिन 12 फरवरी 1966 मुझे अभी भी याद है। उस दिन हम बाबा के घर गए, वो भी हमको पापा ने कहा चलो आप सबको ले चलते हैं। तो ले चलते हैं, वो क्यों ले चलते हैं वो भी एक कहानी में है कि हमारे पापा भले कैसे भी थे लेकिन मेरी मम्मी बहुत धार्मिक थी तो कभी भी हम बहनों को, हमको पिक्चर नहीं ले जाती थी देखने के लिए, हमने कभी थिएटर हॉल ही नहीं देखा है। तो हम पापा को कई बार बोलते थे पापा हमको पिक्चर ले दिखाने ले चलो, बोलता तुम्हारी मम्मी चले तो तुम चलो, उसके बिना नहीं ले जाएंगे। तो मम्मी को बोलते थे तो मम्मी कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन कहती थी मैं पिक्चर दिखाने ले जाऊं मेरी लड़कियां बिगड़ जाएंगी। हम तीन बहनें थी, इसलिए मम्मी ना खुद जाती थी ना हमको ले जाती थी। तो उस दिन पापा ने कहा चलो चलो आज आप सबको पिक्चर दिखाने ले चलता हूं। तो हम बड़े खुश, आज पापा हमको पिक्चर दिखाने ले जा रहा है। अब पिक्चर कौन सा दिखाया? ये पापा का पिक्चर दिखाया, प्रोजेक्टर शो, उसमें सारा पिक्चर दिखा, आत्मा परमात्मा सब ये सब। तो हम जैसे ही प्रोग्राम में गए तो वहां दो दीदियां व्हाइट ड्रेस में बैठी थी, लाल लाइट चल रही थी। मेरे को वो लाल लाइट और ड्रेस इतना आकर्षित किया, एक जैसे कहें ना जादू हो गया। मैंने कहा जीवन बनानी है तो ऐसी बनानी है, ये ड्रेस पहननी है मेरे को। और उसी दिन ये पक्का कर लिया कि मुझे ये जीवन बनानी है। वहां प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद फिर हम सेंटर पर गए। उस दिन हमारा व्रत था शिवरात्रि का, तो शिवरात्रि के व्रत में तो वो ही खाते हैं ना, फलार खाते हैं, अन्न नहीं खाते हैं। तो सेंटर पर तो हमको बूंदी मिली खाने को भोग में। अभी बूंदी कैसे खाएं? तो हम ऐसे सोचने लगे बूंदी मिली है तो, मेरी मम्मी कहती खा लो प्रसाद है, तो खा लिया आराम से। माना नहीं खाना है, क्या है, एकदम कुछ, बस एकदम निश्चय हो गया कि ऐसा मुझे बाबा का बनना है। बस उस दिन से हमारी ये जीवन की यात्रा शुरू हो गई। रोज हम क्लास में जाते, हमको किसी ने कोर्स नहीं कराया, छोटे थे 13 साल की थी मैं, तो सेंटर पर जाते थे, पापा ले जाते थे, मम्मी भी जाती, साथ में हम लोग 5 भाई बहन जाते थे। और हमारे पापा को एक ये निश्चय था कि भगवान इस सृष्टि पर आया है, भगवान अपना कार्य कर रहा है, अब ये दुनिया विनाश होने वाली है, जो करना है वो कर लो। इसीलिए और समय वेस्ट नहीं करना है। तो वो तो जैसे कि खुद खा पी के लग गया, तो हम लोगों को भी लगा दिया। सुबह में 3:30 बजे उठा देते थे और स्नान करा करके 5 बजे हमको सेंटर पर ले जाते थे। हम 5 भाई बहने और मम्मी, हम सातों ही सुबह में 5 बजे घर से निकलते थे और पैदल 3 किलोमीटर चल के जाते थे और सेंटर से फिर क्लास करके आते थे, फिर स्कूल जाते थे। तो ये हमारा एक दिन भी मिस नहीं किया। फिर क्लास में जाते जाते 1.5 मास के बाद मधुबन आने का चांस मिला। सिर्फ 1.5 मास मधुबन बाबा से मिलने के, पापा ने लेटर लिखा बाबा को कि बाबा आप मेरे बाबा हो, मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा है। बाबा ने भी छुट्टी दे दी और हम सारा परिवार, क्योंकि पापा को ये था अविनाश होना है, सत्युगी दुनिया आनी है, हमको स्वर्ग में जाना है, अभी जो करना है वो कर लो। और कहता मैं अकेला नहीं करूंगा, मैं सारे परिवार को लेके जाऊंगा, इसलिए हमको साथ साथ लेके चलते थे। तो हम मधुबन बाबा के घर में आए, या मधुबन आए तो बाबा से मिले। अभी बाबा से मिले तो मेरे को तो जादू हो गया। बाबा इतना प्यारा मेरे को लगा। बाबा से मिल रहे हम 7 दिन, रोज बाबा से मिलते थे, मुरली सुनते थे और मैं तो बाबा के पास जाती, बाबा से बात करती। बाबा का भी मेरे से बहुत प्यार था, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जाके माँ बाप से मिलते बैठते करते। मैं कभी ये भी नहीं देखती थी कि बाबा अकेला बैठा है, कि बाबा क्लास में बैठा है, कि बाबा कमरे में, जहां बाबा होता बाबा के साथ पहुंच जाती थी। और बाबा भी मेरे को बहुत प्यार करता था, पता नहीं मेरा अंदर में होगा। तो बाबा भी कहा आओ बच्ची करता था बाबा भी। तो बाबा के साथ था। फिर जाने का दिन आया तो मैं बाबा को बोली, बाबा अब मुझे नहीं जाना है, मैं तो ब्रह्मा कुमारी बनूंगी, अब मुझे जाना नहीं है, मम्मी पापा को जाना है तो जाए। तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची तुम तो अभी छोटी हो, उस समय मैं 9th क्लास में पढ़ती थी। तो बाबा ने कहा, बच्ची तुम छोटी हो अभी, तो हाई स्कूल तो पढ़ लो फिर आना। तो मैंने बाबा को सामने जवाब दिया, बाबा आप रोज मुरली में सुनाते हो विनाश हो जाएगा, और आप मेरे को पढ़ने के लिए भेज रहे हो, और विनाश हो गया तो मैं कब पढ़ाई पढ़ूंगी। तो बाबा ने हंसते हंसते मेरे को कहा, बच्ची बाबा तेरे लिए विनाश रोक लेगा। तब बाबा ने ये कहा तो मैं चली गई, भाई बाबा अब कह रहा है तो जाना ही पड़ेगा ना, तो मैं चली गई। फिर पढ़ाई की है, यही बताओ मैं पढ़ने में बहुत होशियार नहीं थी, लेकिन बाबा ने मुझे कहा कि तुम पढ़ के आना, तो मैं इतनी लगन से पढ़ाई की कि अगर मैं फेल हो गई तो बाबा फिर भेजेगा मेरे को, तुम जाओ दोबारा पढ़ने के लिए। तो बहुत मेहनत की, और मेहनत करके 1.5 साल पढ़ाई करके हाई स्कूल पास करके मैं बाबा के पास आ गई। तो बाबा के पास हम 68 में बाबा के पास आई, तो फिर आकर के बीच में 2-3 बार आना जाना, 3 बार हम लोग आए बाबा के पास, पापा मम्मी आते थे तो साथ में। हमारे पापा का एक लक्ष्य था, मैं सबको साथ ले जाऊंगा। मैं आज उस आत्मा को धन्यवाद देती हूँ कि वो हमको ले लेके साथ में चला। आज उसकी मेहनत से हम आज इस स्टेज पर बैठी। तो हमको भी मधुबन ले आते थे तो बाबा से मिल के जाते थे। फिर हम जब पूरी मैंने एग्जाम दे ली तो एग्जाम दे करके मैं मधुबन आई, और मधुबन हमारी दीदी के साथ, हमारी टीचर थी उनके साथ में आई। हम मथुरा से ज्ञान में लिया, तो मथुरा में हमारी टीचर थी, आप जानते होंगे ब्रिजमन भाई को, उनकी लौकिक माताजी थी जिनको सब लोग यज्ञ में चाची बोलते थे। तो वहां से हमने ज्ञान लिया, वहां उनके साथ में मधुबन आई। तो 15 दिन मधुबन में रहे थे, तो 15 दिन के बाद जाने का प्रोग्राम बना। तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं आना है, तो बाबा ने कहा बच्ची की दिल है अब रहने दो यहाँ। तो मैं मधुबन में रुक गई, मधुबन में रह गई, और हमारी दीदी चली गई। तो मधुबन में बाबा के पास रोज जाना, क्लास करना, मुरली सुनना, और जा करके बाबा से मिलना। तो पांडव भवन में बाबा अपना ऑफिस है, वहां पर बैठते थे और सबसे मिलते थे, पत्र लिखते थे। तो मैं भी वहां जाके बाबा के पास, जैसे बच्चे होते हैं ना माँ बाप के गले में हाथ डाल के बैठते हैं, ऐसे बाबा कुर्सी पर बैठा होता था और मैं बाबा के गले में हाथ डाल के बाबा के पास ऐसे चिपक के खड़ी रहती थी। और ऐसे एक दिन खड़ी थी बीच में, तो बाबा को जो संभालने वाली बाबा की ब्राह्मणी थी लच्छू दादी, वो बाबा के पास आई और बाबा को कहा, बाबा आज आपका खाना बनाने वाली बहन घर चली गई है, अभी खाना कौन बनाएगा। तो बाबा ने कहा ये बच्ची बनाएगी, ऐसे बाबा ने मेरे तरफ इशारा करके कहा ये बच्ची बनाएगी। अब मेरे को तो खाना इतना आता ही नहीं था बनाना, थोड़ा बहुत साधारण आता है वो आता था, लेकिन बाबा ने कहा ये बच्ची बनाएगी, तो मैं ऐसे देखती रही। फिर बाबा ने तुरंत लच्छू दादी को कहा कि लच्छू इस बच्ची को बाबा का खाना बनाना सिखाना, तो मेरी समस्या खत्म हो गई है कि भाई मैं कैसे बनाऊंगी क्या करूंगी। बाबा ने ही मेरा समाधान कर दिया और बाबा ने लच्छू दादी को बोला बच्ची को सिखाना खाना कैसे बनाना है। तो बाबा ने मेरे को ये ड्यूटी दी और फिर मैं बाबा का खाना बनाया और बाबा का खाना बनाते मैंने खाना बनाना सीखा और बाबा को खाना बना के खिलाती थी। तो खाना बनाते समय भी बाबा हमसे पूछते थे बच्ची किसका खाना बना रही हो है? आपने बाबा का कमरा देखा है ना सभी ने है? जहां बाबा की खटिया है अभी भी, वो दरवाजे के जो यहाँ अभी भंडारी रखी हुई आगे वरंडे में वहां ही अंदर जगह थी, वहां भी वो तो उस साइड में बाथरूम बना दिया, वहां ही था एक किचन छोटा सा बाबा का, हम वहां ही खाना बनाते थे। तो बाबा आते जाते ऐसे झुक के, वो दरवाजा थोड़ा सा छोटा था और बाबा की हाइट थी अच्छी, तो ऐसे बाबा झुक के याद कराता था बच्ची किसका खाना बना रही हो। बाबा ये याद कराता था कि बच्ची किसका खाना बना रही हो। तो मैं भी बाबा को कहती थी बाबा शिव बाबा के रथ के लिए भोजन बना रही हूँ। तो बाबा हमको स्मृति दिलाता था कि भाई भोजन भी बना किसके लिए बना रहे हो। ये एक भोजन तो बहाना था मेरा, लेकिन मेरे को आज भी इस चीज का गर्व है कि हमारी दादियां 14 साल यज्ञ में बाबा के साथ रही। लेकिन फिर भी कितना समय है, भाई क्लास में मिलेंगे मिलने आएंगे ये कर। मैं तो वहां की वहां ही 3 मास सुबह में 5 बजे बाबा के कमरे में जाती थी, रात को 11 बजे वहां से बाबा सोते तब आती थी, दिन में 1 घंटा बस। इतना समय बाबा के साथ रहने का मेरे को चांस मिला, गोल्डन। और बाबा से वो पालना पाने का, प्यार पाने का है? तो मैं इस ज्ञान में आई बाबा के प्यार, बाबा ने मुझ आत्मा को इतना प्यार से भरपूर किया कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। तो भगवान के प्यार में ये एक बहाना भोजन का था, बाबा के नजदीक आने का ये सौभाग्य मिला मेरे को। और इस सौभाग्य के आधार से ही बाबा का भोजन बनाते बनाते मैं ब्रह्मा भोजन बनाना सीख गई। बाबा हमेशा मेरे को बोलता था बच्ची तुमको टोली बनाना आता है? तो मैं बाबा को बोलती बाबा टोली नहीं आती है। तो बाबा ने कहा अच्छा तुम सेंटर पर जाएगी तो तुम टोली बनाना नहीं सीखेगी तो भोग कैसे खिलाएगी? तो मैंने टोलियां बनाना सीखा। आज ऐसी कोई टोली नहीं है जो मुझे बनानी नहीं आती है, पर बाबा ने मुझे सिखाई। खाना बनाना भी बाबा ने सीखा है, क्यों बाबा का बनाया तो मैं सब सीख गई। तो ऐसे में बाबा का भोजन जब बनाती रही, बाबा के पास रही, फिर 3 मास हुआ था, फिर हमारी दीदी आई, आई और बाबा को बोला कि बाबा अभी मैं प्रभा को ले जाती हूँ। तो कहा क्यों? तो कहा मुझे नांगल जाना है। ब्रिजमन भाई उस समय पर नांगल में रहते थे, वहां सेंटर था, उनकी जॉब भी थी, तो मेरे को वहां जाना है, तो प्रभा पालकी को मेरे को ले जाना है। तो बाबा के सामने बोला, मैं भी वही थी, तो मैंने बाबा को बोला बाबा मैं नहीं जाऊंगी। तो जैसे एक छोटा बच्चा हट करता है ना, मैं भी हट पकड़ के खड़ी हो गई, बाबा मैं नहीं जाऊंगी, बाबा मैं नहीं जाऊंगी। और हमारी दीदी कहे नहीं मैं ले जाऊंगी। तो बाबा साक्षी होके देख रहा था, फिर बोला, बच्ची देखो बच्ची की दिल नहीं है ना, तो नहीं ले जाओ। तो हमारी दीदी नहीं मानी, नहीं बाबा मेरे को ऐसा है, फिर मैं वापस इसको थोड़े दिन के बाद भेज दूंगी। तो बाबा से मेरा इतना प्यार हो गया था कि मैं बाबा को नहीं छोड़ सकती थी। तो रोना बहुत आ रहा था क्योंकि छूट रही थी बाबा से, और दीदी को भी मना नहीं कर सकती थी, तो मेरे को जबरदस्ती ले जा रहे। तो ब्रिजमन भाई साहब भी वहीं खड़े थे, वो भी वहीं थे। तो मेरे को बहुत रोना आया, तो भाई साहब मेरे को बोले, प्रभा तुम ऐसे रो रही हो जैसे तुम फिर बाबा से मिलेगी नहीं। तो मैंने भाई साहब को बोला उसी समय, क्योंकि बाबा से इतना प्यार था, अब क्या बोल रही हो तो कुछ वो ही नहीं है, कि मैंने ऐसा बोला बाबा, मैंने कहा भाई साहब विनाश हो जाना है, इस शरीर का क्या भरोसा है, पता नहीं मैं बाबा से मिल सकूं या नहीं मिल सकूं। ये शब्द मैंने उनको बोले। मैंने ये नहीं कहा कि बाबा चला जाएगा, मैं ये बोला कि विनाश हो जाएगा, पता नहीं मैं बाबा से मिल सकूं या नहीं मिल सकूं। तो उस समय पर 68 में 24 दिसंबर हम मधुबन से गए, और वहां से फिर मैं नांगल चली गई दीदी के साथ, और 18 जनवरी बाबा व्यक्त हुए। कितने दिन, 24-25 दिन का हमारा ये वियोग रहा। और जब समाचार आया कि ऐसे ऐसे बाबा व्यक्त हुआ है, तो मेरे को बहुत शौक लगा। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हमारी दीदी और भाई सब मेरे को वहीं छोड़ के आ गए, मधुबन आ गए, और मैं वहीं थी। तो मेरे को एकदम इतना रोना आया, और अंदर से, क्योंकि बाबा हमेशा मुरलियों में कहते थे कि बच्चे जिनका प्यार होगा ना, वो अंत समय मेरे पास होंगे। तो मेरे को ये शंका, मेरा तो बाबा से प्यार ही नहीं था, इसलिए मैं बाबा से बिछुड़ गई। मेरा बाबा से प्यार ही नहीं था, मैं बाबा से बिछुड़ गई। तो बस ऐसा सोच सोच के रोती जाओ, रोती जाओ, रोती जाओ, रोती जाओ, आंखों में से आंसू ही बंद नहीं हो रहे थे। तो ऐसे ही मैं रोते रोते एक दिन खटिया पर ऐसे लेटी हुई थी, और बाबा मेरे सिर पे आके खड़ा हुआ, जैसे बाबा खड़े होते थे ऐसे मेरे सिर पे आके खड़े हुए बाबा, और बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और मेरे को बोला, बच्ची मैं कहाँ गया हूं, तेरे साथ हूं। बाबा ने ये शब्द बोले, बच्ची मैं कहाँ गया हूं, तेरे साथ हूं। तो मेरे को वो फीलिंग आई, ऐसा अनुभव मेरे को कितने दिन तक, बाबा मेरे साथ, जा मैं बाबा मेरे साथ, बाबा मेरे साथ है। जब मेरी बुद्धि में, जब तक मेरे को ये बैठा नहीं कि बाबा मेरे साथ है, वो बाबा मेरे साथ ही रहा। फिर ये बुद्धि में बैठ गए, नहीं बाबा तो मेरे साथ है, बाबा कहीं नहीं गए। बाबा ने कहा, मच्छी मैं कहीं नहीं गया हूं, मैं तेरे साथ हूं। तो तब से बाबा मेरे साथ है। मैंने कभी भी आज तक बाबा को अपने से अलग नहीं पाया, बाबा मेरे सदा साथ है। जैसे साकार में बाबा मेरे साथ था, वैसे अभी भी बाबा मेरे साथ है, सदैव हर पल बाबा मेरे साथ है। ये बाबा ने मुझे अनुभव कराया। फिर उसके बाद तो हम वहां 2-3 मास रही, फिर उसके बाद मधुबन आ गई, क्योंकि बुद्धि में तो मधुबन ही था, मेरे को वहां चैन ही नहीं आता था। तो मधुबन आ गई, फिर मधुबन में यहाँ मैं रही 2.5 साल, दादियों के साथ, और दादियों के साथ रह करके बहुत कुछ सीखा, और फिर दादियों ने हमको सेवा के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजते रहे, वो भी जाते रहे। हाँ, एक बात थी कि कभी भी हमने बाबा को और दादियों को कोई भी बात में ना नहीं कहा। जो दादियों ने कहा ये करना है प्रभा जी, बाबा ने कहा ये करना है जी, कभी अपनी मत नहीं चलाई। तो बाबा ने, दादियों ने हमको सेवा में जहां जहां भेजा वहां वहां हम सेवा के लिए गए, सेवा करते रहे हैं, और बाबा को अपने साथ रखते रहे। तो हमने ये देखा कि बाबा को साथ रखकर बड़ों की आज्ञाओं का पालन करके हम जो कार्य करते हैं उससे हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ जाता है। मैंने अपने जीवन के अंदर कोई पुरुषार्थ नहीं किया है, जो भी पुरुषार्थ किया है वो बाबा ने कराया है, और आज तक भी मुझे कोई ऐसा नहीं लगा कि ये मुश्किल है, ये कार्य मुझे नहीं करना है, मेरे को नहीं आता है, कभी ना बोला ही नहीं। जब जब जैसे जैसे कहा वैसे वैसे किया। दादियों ने भी, दादी दीदी, दीदी मनमोहिनी, दादी प्रकाशमणि, और सब जितनी भी दादियां थी, सब दादियों का मैंने बहुत प्यार पाया। और जब भी दादियां हमको सेवा के लिए मधुबन में बुलाती थी, मैं तो रही पहले 2.5 साल मधुबन में, फिर उसके बाद दादियों ने मुझे सेवा के लिए पहले एक बार नेपाल भेजा, फिर बॉम्बे भेजा, बॉम्बे भी मैं 4 साल सेवा में रही, फिर उसके बाद मेरे को गुजरात में भरूच में भेजा, भरूच में मुझे 50 साल हो गए सेवा करते हुए वहां, और वहां सेवा में हूँ। लेकिन सेवा करते हुए भी भले सेंटर की सेवा थी, कितना भी था, लेकिन पहले मेरा मधुबन, पीछे भरूच। आज तक जब भी दादियां सेवा के लिए मुझे बुलाती थी तब मैं यहाँ पर हाजिर हो जाती थी, और मधुबन में भी सेवा में भी जो है बाबा की सीजन होती थी ना मधुबन में, तो विशेष पार्टियां आती थी तो दादी मुझे भोजन खिलाने की ड्यूटी हमेशा देती थी, और वो सेवा में लेती थी और बजाती थी। और साथ साथ जब से यज्ञ के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए, और प्रोग्राम में भी जो भी किचन में सेवा कराने का, भोजन खिलाने का, ये ड्यूटी सदा हमारी रही, और आज तक भी वो ड्यूटी है। कि कोई भी VIP कॉन्फ्रेंस होती है, किसी को भोजन खिलाना होता है, तो भरूच की पार्टी ही आकर के वो भोजन खिलाती है और वो सेवा करती है। तो दादियों ने वो सेवा दी, फिर सेवा करते करते अभी मधुबन ज्ञान सरोवर में भी मैं सदा सेवा के लिए आती रहती थी। तो सेवा करते करते अभी ज्ञान सरोवर की ये सेवा मिल गई, वो भी दादियों ने, बाबा ने कहा बच्ची ये करना है, तो जो बाबा की आज्ञा, उस आज्ञा को सिर माथे रख करके सेवा की, तो बाबा चला रहा है, बाबा हर कार्य हमसे करा रहा है। ये मेरे जीवन का अनुभव है, और आज तक बाबा मेरे सदा साथ है, दादियां हमारे साथ है। पहले एक इंजन था, अभी तो कितने इंजन बन गए। देखो हमारी सब दादियां कर्मातीत होके गई ना, आज सारे यज्ञ को इतनी सब दादियां चला रही हैं। तो हम तो सिर्फ निमित है, थोड़ा करण करावन हार बाबा है और हमारी दादियां हैं, वो ही सब कार्य करा रही हैं और कराते रहेंगे। हम सेवाधारी हैं और सेवाधारी रहेंगे। ओम शांति।